संकीर्तन की जय, समवेत भक्तवृंद की जय, श्री श्री गुरु गौरांग की जय, हिडिन का माँ श्रीमद्भागवतम की जय। वंदेहम श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं प्रियजनसहितकं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं नमो शुभदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले शृणुते भक्तिवेदान्तस्वामिनीति नाम्ने नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाचार्ये जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासी गौरवकर्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो आध्यात्मिक जगत वास्तविक जगत है और ये जो भौतिक जगत जो है वो वास्तविक नहीं है। आध्यात्मिक जगत का ये विकृत प्रतिबिंब है। भगवद गीता में भगवान बताया ना कि ऊर्ध्वमूलम अधःशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्थं वेद स वेदवित्। तो एक ऐसा अश्वत्थ वृक्ष है जिसके जड़ रूट्स ऊपर की ओर है और वृक्ष नीचे की ओर है, शाखाएं नीचे की ओर है। तो इस जगत में तो ऐसे ही हमारे अनुभव में हम लोग ऐसे कोई वृक्ष को देखते नहीं है कि जिसका मूल या जड़ जो है वो ऊपर की ओर है। सामान्यतः क्या होता है, जो जड़ है वो नीचे रहते हैं, मूल जो है नीचे रहते हैं और पत्तियाँ फूल फल शाखाएँ सब ऊपर की ओर रहते हैं। तो भगवान क्या कहना चाहते थे कि इस भौतिक जगत क्या है, तो वो एक विकृत प्रतिबिंब है, आध्यात्मिक जगत के विकृत प्रतिबिंब है। वास्तविक वृक्ष जो है वो आध्यात्मिक जगत है, उसका प्रतिबिंब इस जगत में हम ये भौतिक जगत है। तो वो जो आध्यात्मिक जगत के जो वृक्ष है वो जब विकृत प्रतिबिंब के रूप में प्रकट होता है तो वो ऐसे दिखता है कि जड़ मूल ऊपर की ओर और शाखाएं नीचे की ओर ऐसे दिखते हैं। तो बेसिकली क्या कहना चाहते थे भगवान की आध्यात्मिक जगत वास्तविक जगत है, ये भौतिक जगत वास्तविक जगत नहीं है। तो ऐसा कहना चाहते थे। वास्तविक शब्द का भी हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। सत और असत कहते हैं ना, तो सत आध्यात्मिक जगत सत है और भौतिक जगत असत है, असत्यम असत है। तो असत शब्द का अर्थ है कि ऐसा नहीं कि इसका अस्तित्व ही नहीं है, तो इसका अस्तित्व है लेकिन वो शाश्वत नहीं है, ये अस्थाई है, टेम्पररी। तो मायावादी लोग क्या कहते हैं, वो लोग कहते हैं ब्रह्म सत्य जगन मिथ्य। ब्रह्म क्या है, सत्य है। ब्रह्म मतलब वो जो प्रकाश जो है, ब्रह्म ज्योति जो है, ब्रह्मन, तो वो सत्य है और जगत क्या है, मिथ्या है। तो उनके अनुसार माया के प्रभाव से ब्रह्म जो है क्या किया, इस भौतिक जगत और भौतिक जगत में जो भी जीव है उसके रूप में प्रकट हो गए। विकारवाद कहते हैं इसको, तो और विवर्तवाद, विवर्त के कारण परिवर्तित होना, ब्रह्म का परिवर्तित होना उसको विवर्त कहते हैं। विवर्तवाद का वर्णन करते हैं, लेकिन व्यासदेव वेद शास्त्रों में विवर्तवाद का वर्णन नहीं किया उन्होंने, परिणामवाद का वर्णन किया। भगवान है और उनके शक्तियाँ हैं, उनके शक्तियों का परिवर्तन होता है तो उसको परिणामवाद कहते हैं। तो शक्तियों का परिवर्तन मतलब क्या होता है? आध्यात्मिक जगत में योग माया अंतरंग शक्ति, भगवान का अंतरंग शक्ति होता है। तो पूरा आध्यात्मिक जगत का सृष्टि अंतरंग शक्ति से होता है। तो वही अंतरंग शक्ति भौतिक जगत में बहिरंग शक्ति के रूप में प्रकट होती है, तो परिवर्तित होती है योग माया और इस भौतिक जगत में महामाया के रूप में प्रकट होती है। तो ऐसे शक्तियों का परिवर्तन होता है। भगवान स्वयं परिवर्तित नहीं, ब्रह्म परिवर्तित नहीं होते हैं। तो ये शंकराचार्य और अन्य मायावादी लोग, वो लोग ऐसे विवर्तवाद को वर्णन करते हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है? परिणाम। जब भी हम लोग शक्ति, इस जगत में शक्ति का अनुभव करते हैं, हम लोग सब शक्ति है यहाँ पर, है ना। जब भी लोगों को आप पूछे आपका भगवान का बारे में क्या धारणा है, क्या समझ है, तो वो लोग ऐसा है एक शक्ति है, ऐसे लोग बोलते हैं, है ना। तो भौतिकवादी लोग भी शक्ति का अनुभव कर रहे हैं, है कि नहीं। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के बिजली का शक्ति, अलग अलग प्रकार के शक्ति है। तो जब शक्ति है तो शक्तिमान होना चाहिए। तो शक्तिमान परिवर्तित नहीं होते क्योंकि उनके अंदर कोई विकार नहीं आ सकता है। तो उनके अंदर विकार आ सकता है तो विकार जो है, आप विकार को सृष्टि, विकार को करने वाले है, करने वाली हो माया, माया के प्रभाव से विकार हो जाता है, ऐसे वो लोग मायावादी कहते हैं। तो माया शक्ति भगवान से भी श्रेष्ठ हो सकता था, तो ऐसा नहीं होता है। तो भगवान सबसे श्रेष्ठ है, सबसे ऊपर है, वो माया के प्रभाव में नहीं आते हैं, इसलिए विवर्तवाद असत्य है। तो जगत मिथ्या नहीं है, जगत क्या है? सत्य है, लेकिन उसका अस्थायी अस्तित्व के कारण उसको असत बताएगा। तो मायावादी लोग जब भी असत शब्द को पढ़ते हैं तो वो लोग, इफ़ यू वांट टू सिट ऑन द चेयर यू कैन सिट। तो जब वो लोग असत शब्द को पढ़ते हैं तो तुरंत ही वो लोग क्या समझ जाते हैं? मिथ्या समझते हैं, ये अस्तित्व में है ही नहीं करके। तो लेकिन अस्तित्व में है। अभी मायावादी को एक क्रिकेट बैट लेकर मार दिया, तो उसको जो दुख होता है ना, पेन होता है ना, कष्ट होता है ना, तो या उसको दांत का कुछ समस्या हो गया तो डेंटिस्ट के पास जाते हैं ना मायावादी लोग, वो क्यों नहीं बोलते ये सब असत्य है भूल जाओ करके, ऐसा नहीं बोलते हैं, डॉक्टर के पास जा भाग जाते हैं। तो जगत मिथ्या है, शरीर मिथ्या है, ये सब पेन जो है, कष्ट जो है, वो भी मिथ्या है, सुख दुख इस जगत में मिथ्या है, तो क्यों डॉक्टर के पास जाते हो? तो वो सत्य है, वो ये अनुभव जो है, सुख दुख का जो अनुभव है वो सत्य है, लेकिन अस्थाई है, जैसे भगवान ने बताया। हाँ, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय या शीतोष्ण सुख दुखदा अगम पायिनो अनित्य ताम तितिक्षस्व भारत। अनित्य शब्द भगवान यूज करते हैं, अनित्य मतलब वो शाश्वत नहीं है। जैसे तो मौसम बदलते हैं, बारिश का मौसम आता है, फिर धूप का मौसम आता है, तो ऐसे ही सुख दुख का भी आते हैं और जाते हैं, अनित्य है वो। उसके बारे उसको सहन करके तुम्हें क्या करना चाहिए? अपने कर्तव्य निभाना चाहिए, अपने धर्म को पालन करना चाहिए। तो ऐसे भगवान अर्जुन को समझाते हैं। तो ये भी अनित्य का अर्थ है शाश्वत नहीं है, अस्थाई है, आते हैं जाते हैं। वैसे बहुत ही जगत का सृष्टि होता है, विनाश होता है, तो ज़्यादा समय तक नहीं रहता है, ये असत्य है। इसलिए तो हम लोग भी मिथ्या शब्द को उपयोग कर सकते हैं कभी कभी, लेकिन ना हमें हमारे मिथ्या शब्द या असत्य शब्द को जब हम लोग, इट्स नॉट अ रियल, इसका अर्थ है हरे कृष्णा, इसका अर्थ क्या होता है? वो टेम्पररी, तो अस्थाई है। तो यही माया शब्द का भी अर्थ है। माया शब्द का क्या अर्थ है? माया, अंग्रेजी में प्रभुपाद जी वो कहते हैं दैट विच इज नॉट, जो है नहीं, जो वास्तविक नहीं है उसको माया कहते हैं। तो इसको कैसे समझना चाहिए? माया शब्द का परिभाषा है कि जो वास्तविक नहीं है तो वो माया है। तो अभी उसके पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे, ये भौतिक जगत भी वास्तविक है लेकिन अस्थाई है, अनित्य है, शाश्वत नहीं है। तो इसका अर्थ है कि जो भी हम लोग जो माया समझते हैं, जो है नहीं, तो वो हमारे मन में वो एक भ्रम है वो। तो जैसे हमें भय क्यों होता है? भय हमारे हृदय में क्यों, मन में भय क्यों आता है? क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि भगवान कृष्ण को छोड़कर अन्य कोई शक्ति है, अन्य या व्यक्ति या कोई शक्ति है, उसके कारण हमारे मन में या हृदय में भय उत्पन्न हो जाता है। तो वो हमें कुछ करेंगे, कुछ होगा उनके कारण हमारे लिए, तो ऐसे भय आ जाता है। तो क्रिश्चियन धर्म में, ईसाई धर्म में वो लोग ऐसे कुछ कुछ दर्शन को उन्होंने सृष्टि किया। भगवान है और सेटन शैतान है, दोनों के बीच में क्या है, स्पर्धा रहता है श्रेष्ठता के लिए, कौन सबसे ज़्यादा बड़े बन जाएंगे। सो उनमें कोई बीच के बीच में सब स्पर्धा होता है, लेकिन भगवान के साथ कोई स्पर्धा करने वाला कोई नहीं है इस जगत में, ऐसा कोई व्यक्ति, ये वो लोग ऐसे बना दिया अपना है। बहुत सारा ऐसे थ्योरी बनाते वो लोग। तो सभी धर्मों में ऐसे होता है, सब लोग अपना अपना कुछ बना लेते हैं, है ना? तो ऐसे हमारे आंदोलन में भी हो सकता है, प्रभुपाद जी के बाद बहुत सारा कुछ लोग कुछ बना के बनावटी करके बोल देते हैं, है ना? तो या जो भी प्रभुपाद जी ने सिखाया है उसको डिलीट कर देते हैं, डिलीट, लाइक यू सेड ना, वेयर इट इज मेंशन ऑल दिस, यू सेड नो दैट समन सेड दैट, ओ ये सब चीज़ कहाँ बताया गया, प्रभुपाद जी ने कहाँ ना बताया, लाइक सो आर डिलीटेड। तो ऐसे हम लोग, हमारे मन में भ्रम हो जाता है कि अन्य कोई चीज़ है जो हम लोगों को कष्ट देगा, तकलीफ देगा, हम लोगों को कुछ करेगा, इसके कारण हृदय में भ्रम, ये ऐसा भय आ जाता है। लेकिन हमको पता है भगवान कृष्ण और उनके शक्तियों को छोड़कर अन्य कुछ भी नहीं है इस जगत में। भगवान कृष्ण को छोड़कर और या उनके शक्तियों को छोड़कर अन्य कुछ भी नहीं है तो हमारे हृदय में क्यों भय आएगा, उसका ज्ञान है तो। इसलिए सर्वम कलम इदम ब्रह्मा, ब्रह्मा भगवान कृष्ण को छोड़कर अन्य कुछ भी नहीं है इस जगत में, सिर्फ उनके वो है और उनके शक्तियां हैं, हम भी उनके शक्तियां हैं। जीव को भी तटस्थ शक्ति बताएगा ना, तटस्थ शक्ति, पराशक्ति ऐसे बताएगा, बहुत ही जगत अपराशक्ति है भगवान, माया शक्ति, दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरतया, तो माया शक्ति है। तो इसलिए भगवान कृष्ण को छोड़कर अन्य कुछ भी नहीं है इस जगत में। तो जब ऐसे रहे साक्षात्कार हो जाता है तो हम भय से मुक्त हो जाते हैं और भ्रम से मुक्त हो जाते हैं। तो एनीवे कहने का अर्थ है कि भौतिक जगत वास्तविक जगत नहीं है, आध्यात्मिक जगत क्या है, वास्तविक जगत है। तो प्रभुपाद जी एक और उदाहरण भी दिए कि रात को हम लोग जब सोते हैं तो हम लोग स्वप्न देखते हैं, ड्रीम। सो जब स्वप्न देखते हैं तो अपने आप को क्या मानते हैं, हम बहुत बड़ा राजा है, हमारे साथ कोई रानी बैठी है, या कोई शेर हमारा पीछे पड़ा है, हम लोग भागते रहते हैं, या ऐसा हम सोने का एक पर्वत देखते हैं हम लोग, तो ऐसे कुछ देखते हैं, या मैं तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर बन गया, तो ऐसे कुछ हम लोग देखते हैं, या कोई हीरोइन तेलुगु हीरोइन के पीछे भाग रहा था मैं करके। तो ये सब क्या है, हम लोग स्वप्न में देखते हैं, जब उड़ जाते हैं तो हम लोग समझ में आता है ये सब क्या है, भ्रम है, वास्तविकता नहीं है। तो प्रभुपाद जी कहते थे जो हम लोग वास्तविक समझ रहे हैं वो भी एक ब्रह्म है। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, या भारतीय हूँ, तेलुगु वाला हूँ, तो ये जो भी हम लोग सोच रहे हैं वो भी एक ब्रह्म है। क्यों एक ब्रह्म है? इस मृत्यु के बाद जब हम लोग, हमारा मृत्यु हो जाता है, फिर से हम लोग कहीं और जन्म लेते हैं, कुछ और चीज़ों को हम अपने आप, कुछ और चीज़ों से हम लोग अपने आप को पहचानते हैं। ये जो पहचानते थे मैं तेलुगु हूँ, मैं हाँ ये भारतीय हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, बिजनेसमैन हूँ, जो भी है वो सब भूल जाते हैं हम लोग, चला गया वो, है कि नहीं? जैसे रात को जो भी हम लोग स्वप्न में देखा वो भूल गए, जब भूल गए मतलब, या वो सत्य नहीं, उठने के बाद हम लोगों को पता चल जाता है कि वो सत्य नहीं है। तो वैसे ही इस मृत्यु के बाद जो भी अपने आप को इस जीवन में हम लोगों ने सत्य समझा वो क्या है, वो खत्म हो गया, वो चैप्टर क्लोज हो गया वो। तो इसको डे ड्रीमिंग कहते हैं, दिन में स्वप्न देखना। रात में स्वप्न देखते हैं और दिन में भी हम लोग स्वप्न देखते हैं, दिन का स्वप्न और रात का स्वप्न। अंतर इतना ही है कि दिन का स्वप्न सिर्फ कुछ क्षणों के लिए रहेगा, कुछ मिनटों के लिए रहेगा, या कुछ 1 घंटे के लिए रहेगा, लेकिन दिन का स्वप्न है वो 100 साल तक रहेगा, एक जन्म तक। तो ये 100 साल तक रहेगा। तो ऐसे तो दिन का स्वप्न और रात का स्वप्न होते हैं। तो अंत में इस भौतिक जगत में जब हम लोग आध्यात्मिक जगत चले जाएंगे, इस भौतिक जगत में जो भी हम लोग अनुभव किया वो स्वप्न के समान लगेगा, क्योंकि आध्यात्मिक जगत क्या है, वो वास्तविक है। जो भी करोड़ों करोड़ों साल तक कितने भी सारे जन्म लिए, कितने भी सारे हम लोग शरीर धारण किए, तो वो क्या कैसे लगेगा, एक स्वप्न के समान लगेगा आध्यात्मिक जगत में चले जाएंगे तो ये भौतिक जगत का करोड़ों करोड़ों सालों का जो हमारा प्रवास है वो भी एक क्या है, स्वप्न के समान है वो, तो वो भी वास्तविक नहीं है। तो ऐसे हम लोग एक स्वप्न के बाद दूसरा स्वप्न, एक स्वप्न के बाद दूसरा स्वप्न, कभी कभी ऐसा भी होता है ना, रात को एक स्वप्न रहता है फिर दूसरा स्वप्न आ जाता है, ऐसा भी होता है ना, तो अलग अलग स्वप्न देखते हैं हम लोग। ऐसे भौतिक जगत में कई सारे स्वप्न देखते हैं, कई सारे जीवन बिताते हैं और कई सारे स्वप्न देखते हैं हम लोग। तो अंत में जब आध्यात्मिक जगत में आ जाते हैं तो हमारा वास्तविक अनुभव होगा, वास्तविकता का अनुभव होगा, हमारा क्या स्थिति है, भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, भगवान के क्या हमारा सेवा है, उनके प्रति कार्यकलाप, हमारे वास्तविक कार्यकलापों में हम लोग स्थित हो जाएंगे। तो ये वास्तविकता है। तो भौतिक जगत में जो भी हम लोग करते हैं वो वास्तविक नहीं है। और लेकिन आधुनिक समाज में ये भौतिक जगत पहले से ही विकृत प्रतिबिंब है, वास्तविक छाया के समान है, जैसे हम समझा रहे थे कि तो एक भौतिक जगत विकृत प्रतिबिंब, ऐसे वृक्ष जिसके मूल ऊपर की हो रहा है, शाखाएं नीचे की हो रहा है, ऐसा वृक्ष को हम लोग क्या देखते हैं, वो पानी में, पानी के तट पर जो वृक्ष है उसका प्रतिबिंब हम लोग पानी में देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि मूल ऊपर की ओर है, शाखाएं नीचे की ओर है, तो वास्तविकता नहीं है वो, वो सिर्फ छाया है, तो परछाई है। हम लोग वहां पर पानी में जो फल दिखता है, वृक्ष का जो फल दिखते हैं, आम का वृक्ष है, आम का फल है, तो उसको पकड़ने के लिए जाएंगे तो हम लोगों को मिलेगा नहीं वो पानी में कूद कर। तो भौतिक जगत में जीव क्या कर रहे हैं, तो आध्यात्मिक जगत में जो भगवान के साथ जो अलग अलग जो जो संबंध है उसका विकृत प्रतिबिंब यहाँ पर देख रहे हैं, उसमें आनंद लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो भगवान के साथ प्रेम प्रेमिकाओं का संबंध रहता है, उनके माता पिता का संबंध रहता है, जीवों का है ना, कोई जीव उनके माता पिता बन जाते हैं, नंद महाराज, यशोदा, वसुदेव, देवकी वगैरह, कोई उनके मित्र बन जाते हैं, इस जगत में भी वही संबंध दिखाई पड़ते हैं, कोई मित्र है किसी का, कोई किसी का माता पिता है, कोई पति पत्नी है, ऐसे। तो हम लोग उस आनंद को प्राप्त करने के लिए इस जगत में कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये वास्तविक नहीं है। या ये थोड़ा बहुत हम लोगों ने चर्चा किया कि ये भी वास्तविक है लेकिन शाश्वत नहीं है। हमारे संबंध क्या शाश्वत है? तो ये एक स्वप्न के समान खत्म हो जाते हैं, शाश्वत नहीं है, क्योंकि आत्मा शाश्वत है और आत्मा का जो भगवान के साथ संबंध है वो शाश्वत संबंध है। उस दिव्य शाश्वत संबंध में जो आत्मा के लिए अनुभव, आनंद अनुभव होता है, उस आनंद को इस भौतिक जगत में कभी कहीं भी हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते। कोई भी रिश्ता में हो या कोई भी चीज़ों में, वस्तुओं में, व्यक्तियों में हम लोग उसको प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन भ्रम के कारण ये सभी इस जगत में जीव उसको प्राप्त करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये एक दृष्टिकोण से हम लोग देखेंगे तो सभी लोग भगवान कृष्ण को ही ढूंढ रहे, उनके पीछे ही पड़े हैं सब लोग। ममो वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः, भगवान कहते हैं ना, सब लोग मेरे मार्ग में ही चल रहे, मेरे ओर ही चल रहे सब लोग। लेकिन उनको पता नहीं है कि वो वास्तविक व्यक्ति कौन है जिनके हम लोग ढूंढ रहे हैं, वह वास्तविक संबंध क्या, कहाँ कहाँ है, किसके साथ है जिसको हम लोग ढूंढ रहे हैं, वो वास्तविक आनंद क्या है उसको हम लोग ढूंढ रहे हैं, उसका अनुभव नहीं है लोगों को, ज्ञान नहीं है उसका। तो इसलिए वो जॉर्ज हैरिसन ने लिखा कृष्णा बुक में, एवरी वन इज सर्चिंग फॉर कृष्णा, सम नो दैट एंड सम डू नॉट नो दैट। सब लोग भगवान कृष्ण को ही ढूंढ रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को पता नहीं है। तो इसलिए इस भौतिक जगत का जो भी अनुभव है वो वास्तविकता नहीं है, वो विकृत प्रतिबिंब है, छाया है वो। और विशेष करके आधुनिक समाज में और भी वो विकृत हो जाता है, मोर मोर रिफ्लेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्शन। कभी वो विज्ञान में ऐसे वो सब पढ़ते हैं ना लोग, या तो वो एक प्रतिबिंब हो जाता है, उसका प्रतिबिंब वो लोग देखते हैं, समझते हैं, तो पढ़ते हैं उसके बारे में, तो ऐसे ही और भी ज़्यादा विकृत प्रतिबिंब हो जाता है। हम लोग वास्तविकता से और दूर चले जाते हैं हम लोग, तो वी आर गोइंग फार अवे इवन फ्रॉम मेटेरियल रियलिटी। आध्यात्मिक जगत का वो वास्तविक सत्यता जो है उससे तो दूर हो हम लोग आ गए हैं भौतिक जगत में आके, और भौतिक जगत में भी और ऐसे तथाकथित प्रगति करके, तथाकथित ऐसे मायावी वस्तुओं का सृष्टि करके हम लोग वास्तविकता से दूर चले जाते हैं हम लोग। तो इसका अर्थ क्या है? जो वर्णाश्रम समाज जो है वो वास्तविक भौतिक सत्य है, समझ में आ गए? तो भौतिक सत्य है, आध्यात्मिक सत्य है और भौतिक सत्य है। हमने बताया ना भौतिक जगत भी सत्य है लेकिन अस्थायी है, इसलिए उसको असत कहते हैं। तो वास्तविक भौतिक सत्यता क्या है, या भौतिक समाज, वास्तविक भौतिक समाज क्या है? वो वर्णाश्रम है। उदाहरण तौर पर आध्यात्मिक जगत में ये संबंध है, माँ का संबंध है, यशोदा माँ है, भगवान कृष्ण के माँ है वो संबंध है, वो वात्सल्य प्रेम को अनुभव करती है और वात्सल्य प्रेम को भगवान को देती है। तो जब वर्णाश्रम समाज है तो ऐसा ऐसा हम लोग प्रेम को देखते हैं हम लोग भौतिक जगत में, लेकिन वर्णाश्रम से जब हम लोग दूर चले जाते हैं तो वो नहीं रहेगा, है ना? कोई माता पिता के और बच्चों के प्रेम नहीं रहता है, सब लोग स्वार्थी बन जाते हैं। तो पाश्चात्य देश में क्या हो जाता है, जब बच्चे थोड़ा बड़े हो जाते हैं उनको छोड़ देते हैं वो लोग, तुम चले जाओ घर से, तुम अपना घर अपना अपना सब करो, तो ऐसे। या वो लोग बूढ़े, माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो उनको छोड़ देते हैं वो लोग, ऐसे ऐसा नहीं होता है। और पति पत्नी का भी आध्यात्मिक जगत में भगवान के द्वारका में भगवान के रानियां हैं या गोपियां हैं, तो वही हम लोग इस जगत में संबंध को देखते हैं विकृत, उसका विकृत प्रतिबिंब पति पत्नी का संबंध। जब वर्णाश्रम से हम लोग दूर चले जाते हैं तो क्या हो जाता है, वो भी नहीं रह जाता, अभी वो डिवोर्स आ गए ना, है ना। या पिछले साल भारत में भी ऐसा नियम बताया गया, लिव इन रिलेशन, विवाह करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे रह जाओ साथ में, ऐसे साथ में रह जाओ करके, जब चाहे छोड़ दो, है कि नहीं। तो इससे क्या होता है, हम लोग क्या कर रहे हैं, वास्तविकता से जो आध्यात्मिक जगत का वो वास्तविक जो विकृत प्रतिबिंब है वो वर्णाश्रम है, और उससे हम लोग और भी दूर चले जा रहे हैं हम लोग। इसका अर्थ है वास्तविकता से हम लोग, और आध्यात्मिक वास्तविकता से तो दूर आ गए हम लोग, भौतिक वास्तविकता से भी हम लोग दूर चले जाते हैं हम लोग। इसके कारण क्या हो जाता है, भगवान के पास जाना और भी दूर हो जाता है, भगवान का साक्षात्कार और भी दूर हो जाता है, क्योंकि हम लोग आध्यात्मिक जगत में जो संबंध है उसको वर्णाश्रम धर्म में है तो उसको समझ सकते हैं, वो माता पिता का क्या संबंध है, यशोदा मैया क्या प्रेम देती है उसका अनुभव हम लोग कर सकते हैं, या वो गोपियाँ या भगवान के रानी या भगवान को क्या प्रेम देते हैं और उनको क्या अनुभव होता है उसका थोड़ा हम लोग थोड़ा कम मात्रा में, कोई बहुत ही कम मात्रा में उसका अनुभव हो जाता है। दूसरे शब्दों में उस अनुभव के कारण क्या हो जाता है, आत्म साक्षात्कार करना आसान हो जाता है। तो एक्सपीरियंस इज हाईएस्ट रियलाइजेशन, ऐसे बताया गया। तो उसको हम लोग हमेशा खंडन करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, शब्द प्रमाण सर्वोच्च है, जो अनुभव करते हैं अनुभव करके जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो परिपूर्ण नहीं है, ऐसे कहते हैं। लेकिन एक दृष्टिकोण से अनुभव करना सर्वोच्च साक्षात्कार है, मुझे भगवान का हम मुझे साक्षात्कार है, अनुभव है, तो अन्य क्या प्रमाण चाहिए मुझे, कोई प्रमाण की जरूरत है नहीं है, है कि नहीं। तो एक दृष्टिकोण से अनुभव क्या है, वो सर्वोच्च साक्षात्कार है, सनातन गोस्वामी ने लिखा है इसको ऐसे। तो ऐसे हम लोग तो भगवान को साक्षात्कार, इसलिए वर्णाश्रम क्या करता है, हमें भगवत साक्षात्कार को आसान बनाता है और हमें वास्तविकता के ओर लेकर जाता है, और आधुनिक समाज में ऐसे चीज़ बना दे दिया हाँ, लाइक इंटरनेट, इंटरनेट में जो हमेशा रहते हैं, फेसबुक में, व्हाट्सएप में रहते हैं, और भी वो वास्तविकता से दूर चले जाते हैं, वो लोग कंप्लीटली स्पेस्ड आउट, वो अंग्रेजी में वो शब्द है ना स्पेस्ड आउट है ना, तो स्पेस्ड आउट मतलब एक पागलपन है वो बस, तो गहरा अंधकार है वो एक। भगवान जब सत्व रजत तमोगुण का लक्षणों को वर्णन कर रहे थे तो तमोगुण का एक लक्षण बताया उन्होंने, मैडनेस, पागलपन। पागल व्यक्ति कैसे रहता है, उसको वास्तविकता से दूर रहता है वो, है ना, पागल व्यक्ति वास्तविकता से दूर रहता है, वो उसको पता नहीं रहता वास्तविकता क्या, वो अपने दुनिया में ही रहता है वो। तो ऐसे जब हम लोग वर्णाश्रम से दूर चले जाते हैं तो पागल हो जाते हैं हम लोग, और इन चीज़ों को बना के और भी पागल हो जाते हैं हम लोग अपने दुनिया में। उस दिन हम मुंबई गए थे, हम बस से उतर गए, वो बस स्टैंड में सब लोग खड़े रहते हैं ना, वो सामान्यतः ऐसे हम लोग, वो एक माता जी थी वहाँ पर, सामान्यतः हम लोग स्त्री की ओर देखते नहीं हैं, तो तुरंत ही उतर गए तो सामने वही दिखाई दिया वो क्या कर रहे हैं, वो खान में डाल दिया ऐसे हाँ सब। आज आधुनिक समाज में, अब आधुनिक सभ्यता का एक लक्षण क्या है, सबके पास ये होना चाहिए, आप देखा है ना, सब लोग ऐसे पकड़े रहते हैं हाँ, अभी समाज में सब लोग ऐसे पकड़े रहते हैं इसको, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, सबके अंदर एक स्मार्टफोन होना चाहिए और वो पकड़े रहना चाहिए। वो एक स्त्री, उन्होंने क्या किया, वो फोन लगाया है और कान में डाल दिया है और नाच रही है ऐसे खड़े होकर, सब दुनिया का कुछ चिंता नहीं है, क्या चल रहा है समाज में, सब अपने ही दुनिया में है ना तो ऐसे हम लोग वास्तविकता से दूर चले जाते हैं हम लोग, इसके कारण पागल हो जाते हैं हम लोग। पर एक दृष्टिकोण से वो पागलपन है बस। तो हम लोगों को पहले भौतिक सत्यता में आना चाहिए, बाद में हम लोग वास्तविक जो आध्यात्मिक सत्यता है उसमें प्रवेश करेंगे हम लोग। पहले ये दुनिया के पागलपन से इस दुनिया के जो सत्यता है उसमें आना चाहिए हम लोग। तो इसलिए आधुनिक समाज में जो भी बनाते हैं, जो भी करते हैं, वो क्या है, सत्यता से दूर चले जाना। तो आध्यात्मिक सत्यता तो दूर की बात है, भौतिक सत्यता भी उससे भी दूर चले जाते हैं। एक दृष्टिकोण से ये पागलपन है बस, और कुछ नहीं है। जैसे पागल व्यक्ति वो अपने ही दुनिया में रहते हैं, ऐसे लोग ही ऐसे इंटरनेट में या मोबाइल फोन में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में चले जाते हैं। तो हम लोगों को पता भी नहीं चलता कितना समय चला जाता है उसमें। तो बद्ध जीव को पागल बताया गया। नूनम प्रमत्त कुरुते विकर्मण यदिन्द्रिय प्रीते अप्रणोति, ऋषभदेव कहते हैं कि नूनम प्रमत्त, पागलपन के कारण। प्रमत्त शब्द का भी अर्थ होता है मत्त, मतलब पागल, उन्मत्त मतलब बहुत ही पागल, और प्रमत्त मतलब स्वभाव से पागल, जन्म से या स्वभाव से जो पागल होते हैं उनको प्रमत्त कहते हैं। उसमें भी अलग अलग वो डिग्रीज बोलते हैं ना, सुपरलेटिव डिग्री, दर्जा होता है, उसमें भी अलग अलग दर्जे का पागलपन होते हैं। तो ऐसे प्रमत्तता के कारण जीव क्या करता है, विकर्म करता है, पाप करता है। किसके लिए, इंद्र प्रीति, इंद्रिय प्रीति के लिए, इंद्रिय तृप्ति करने के लिए, इंद्रियों को प्रसन्न करने के लिए, इंद्रिय सेवा करने के लिए अप्रण होती। तो उसके कारण भौतिक जगत में वो बन जाता है और बहुत सारे कष्टों को यातना हो जाता है। तो आधुनिक समाज में ये सब चीज़ बनाकर क्या करते हैं लोग, और भी विकर्म में फंस जाते हैं, और भी पागलपन में, है ना। अभी हम लोगों को प्रमत्त शब्द से भी अच्छा एक शब्द बनाना पड़ेगा ये लोगों को वर्णन करने के लिए। तो आधुनिक समाज में क्या करते हैं लोग, जो जरूरी चीज़ नहीं है वो बनाकर उसमें व्यस्त रहते हैं, उसको बनाने में व्यस्त रहते हैं, और उसके बाद उसको लोगों को बाध्य करते हैं वो लोग खरीदने के लिए। वो एडवर्टाइजमेंट देखा कर टेलीविजन में, सिनेमा में, वो सिनेमा के जो जो वो नर नारियाँ जो है वो जो करते हैं वो लोग, सभी लोग वही करना चाहते हैं। पहला चीज़ है कि वो सिनेमा भी वास्तविकता नहीं है, वो भी फैंटेसी है ना, फैंटेसी, वो भी वास्तविकता नहीं है वो, है कि नहीं। वो सिर्फ दिखा रहे वो लोग कि हम लोग बहुत खुश है, एक दूसरे के पीछे हम लोग भाग रहे करके, ऐसे वो एक वृक्ष के इर्द गिर्द भागना, कोई गाना गाना, ऐसे वो लोग एक दूसरे को ऐसे दिखा रहे कि हम लोग बहुत खुश है। तो ये जो सिनेमा हॉल में बैठ के वो देखते हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, अपने आप को उस स्थान में डाल रहे हैं और सुख दुख का अनुभव करते हैं। वो सिनेमा में ऐसे सुख का वो कोई सीन आ गया तो ये लोग बहुत हर्षित हो जाते हैं, और कोई दुख का ये हो जाता है, रोना शुरू कर देते हैं। तो क्यों ऐसे अनुभव हो रहा है, क्योंकि हम अपने आप को उस स्थिति से पहचान कर रहे हैं, तो अपने आप को उसमें डाल रहे हैं हम लोग। तो इसको फैंटेसी कहते हैं अंग्रेजी में। तो मनोधर्म है, मानसिक ऊहा पोह कहते हैं ना। तो ऐसे जो सिनेमा में होता है वो वास्तविक नहीं है वो, लेकिन लोग तो उसको वास्तविक समझकर उसका अनुकरण करना चाहते हैं, तो लेकिन वो तो वास्तविकता नहीं है। और क्या करते थे, ऐसे स्वप्न के दुनिया में डूब जाते हैं। तो ऐसे भ्रम की दुनिया में डूब जाते हैं। ये सभी पागलों का लक्षण है, ये पागल लोगों का लक्षण है ये सब चीज़। तो सिनेमा वास्तविक नहीं है, तो वैसे ही समाज में जो भी चलता है वो भी वास्तविक नहीं है। और विशेष करके आधुनिक समाज में ऐसे ज़रूरी नई चीज़ है वो बनाकर लोगों को और ऐसे भ्रम में एक दूसरों को डालना। तो वैसे चीज़ों में हमारे जीवन के लिए, हमारे शरीर को बनाने के लिए, तो शरीर भी क्या है एक बताया गया। उससे पहले कुछ और चर्चा करना है कि भगवान एक शब्द उपयोग करते हैं, मनोगता मनोगता या मनोरथ मनोधर्म, तो अलग अलग शब्द है, मनोरथे नासतो धावतो बही, ऐसे बताया गया ना, मन के रथ में चलने वाले, मन एक रथ को तुलना किया गया, तो मन के रथ में चलने वाले मनोरथ कहते हैं। मतलब वास्तविक रथ नहीं है वहाँ पर, ऐसे मन क्या कर रहा है, ऐसे सोच रहा है कि हम लोग रथ में जा रहे करके। रथ में जाना बहुत, टिन कार में जाना उतना ये नहीं तो रथ में जाना और भी ज़्यादा अरिस्टोक्रेटिक है कि नहीं? टिन कार में जाना क्या अरिस्टोक्रेटिक है? तो ऐसे मनोरथ में हम लोग चलते रहते हैं, या मनोगतान, प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थान मनोगतान, ऐसे भगवान बोलते हैं दूसरे अध्याय में। तो मन क्या करता है, ऐसे सृष्टि करता है बहुत सारे इच्छाओं को, और हम लोग उन इच्छाओं को क्या करते हैं, पूर्ति करते हैं। हाँ, उसके कारण मन क्या हमें समझाता है कि अभी तुम सुखी हो करके, या अभी तुम दुखी हो। जब वो इच्छाएं पूर्ति पूरा नहीं होता है तो अभी तुम दुखी हो, ऐसे हम लोगों को क्या कर देता है, भ्रम में डाल देता है। मन संकल्प विकल्प ऐसे बताएंगे ना, तो इसको मनोगत कहते हैं या मनोरथ कहते हैं। दुनिया में सभी लोग ऐसे मनोरथ में, वो लोग सिनेमा में जाते हैं और सोचते हैं मैं बहुत सुखी हूँ अभी सिनेमा देख लिया करके, लेकिन वह क्या सुखी है, क्या वो वास्तविक वास्तविक सुख है? वो नहीं है, वो वास्तविकता है नहीं, वास्तविकता नहीं है वो, तो एक स्वप्न के समान है वो। 3 घंटा का स्वप्न खत्म हो जाता है, फिर वास्तविकता और भागदौड़ करना शुरू हो जाता है। तो वैसे ही आधुनिक समाज भी क्या है, एक स्वप्न की दुनिया है ये, विशेष करके आधुनिक समाज। इट इज़ अवे फ्रॉम इवन मेटेरियल रियलिटी, भौतिक वास्तविकता से भी दूर है ये। तो वर्णाश्रम क्या है, वो भौतिक वास्तविकता है, वो आध्यात्मिक जगत का एग्जैक्ट रिप्लिका है वो, आध्यात्मिक जगत में जो चलता है। तो अभी भगवान की सेवा में भी ऐसे कई सारे, अभी शहर में है तो शहर में है तो आप कोई ईमेल में इंटरनेट में आपका सेवा हो सकता है, लेकिन वर्णाश्रम में जो सेवा होता है क्या होता है, गाय को लेकर जाना, जो आध्यात्मिक जगत में जो कार्य चलते हैं वैसे ही का सेवा है वो, है कि नहीं? इसलिए क्या होता है, वो सेवा जो है वो भगवान से या आध्यात्मिक जगत से बहुत नज़दीक होता है वो। हमें हमें अप, हम लोगों को भगवत साक्षात्कार के नज़दीक लेकर जाते हैं वो। तो उसमें भी अंतर है, सेवा में भी अंतर है, अंत में सभी सेवा है सर्वोच्च स्तर पर, लेकिन फिर भी वर्णाश्रम में जो सेवा होता है वो भगवान से बहुत ही नज़दीक होता है, क्योंकि वो वास्तविक भौतिक सत्यता है वो। तो ऐसे हम लोग क्या है, पागलपन में और भी ज़्यादा ज़्यादा आधुनिक समाज में डूबते जा रहे हैं हम लोग। तो ये सब जो कुछ भी दुनिया में बनाते हैं वो लोग, सिर्फ कैसे वास्तविकता से दूर जाना चाहिए, कैसे और माया में और भ्रम में और पागलपन में कैसे डूबना चाहिए, तो वही सब कुछ है आधुनिक समाज क्या है। तो इसलिए हमारे आचार्य क्या समझ क्या क्या करना चाहते थे, वो वर्णाश्रम धर्म को बनाना, ताकि लोगों को वास्तविक स्तर पर, लोग कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो भी जो जरूरी है वो नहीं करते हैं। हम लोगों को अन्न चाहिए, दूध चाहिए, उसका प्रोडक्शन नहीं करते हैं, बड़े बड़े इमारत बनाना, मोटर कार बनाना, ऐसे मोबाइल बनाना, सॉफ्टवेयर बनाना, ये करना वो करना, ये कहकर तो जी नहीं सकते हैं ना, है कि नहीं, है कि नहीं। तो जरूरी नहीं है, उसका सृष्टि नहीं करते हैं, इसलिए सब लोग और ज़्यादा माया में डूबते जा रहे हैं, और ज़्यादा अज्ञान में डूबते जा रहे हैं, पागलपन में डूबते जा रहे हैं। तो आधुनिक समाज जो पागलों का, भ्रमित लोगों का समाज है। तो इसलिए आचार्य क्या समझाते हैं, पहले ये लोगों को भौतिक वास्तविकता में तो लेकर आएंगे, कोई एक अच्छा यू नो सेंस स्टैंडर्ड तो उसमें तो लेकर आना चाहिए। ये सब चीज़, वो होमोसेक्सुअलिटी, ये सब विकृत 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 ऐसे विकृत होते जाता है समाज, भौतिक समाज। आप कल्पना नहीं करेंगे क्या हो जाए, ये लोगों का क्या होगा करके, कैसे क्या हो जाएंगे। तो ऐसे अंत में क्या है, जो कुछ भी हम लोग भौतिक जगत में करते हैं वो भगवान को भूलने के लिए करते हैं हम लोग, हमारे साथ भगवान के साथ जो संबंध है उसको भूलने के लिए। तो इसलिए आचार्य ये वर्णाश्रम धर्म को स्थापित करके लोगों को वास्तविक स्तर पर, भौतिक स्तर पर लेकर आना, फिर आध्यात्मिक जगत का अनुभव उनको कराना, वो उद्देश्य है वर्णाश्रम धर्म का। नहीं तो हम लोग क्या है, ऐसे पागलपन में, अज्ञान में, अंधकार में, भ्रम में ऐसे और डूबते जाएंगे। तो अंत में क्या है, लोग सोचेंगे कि इस जगत में, भागवत में ऐसे बताया गया, दो लोग सुखी रहते हैं इस जगत में, सिर्फ दो लोग सुखी रहते हैं, एक परमहंस, दूसरा पागल व्यक्ति। परमहंस वास्तव में वो सुखी रहता है, पागल सुखी नहीं रहता लेकिन अपने आप को सुखी मानता है, अपना दुनिया में वो अपने आप को सुखी मानता है। वैसे इस दुनिया में लोग क्या है, पूरा पागल हो गए और अपने आप को सुखी मानते हैं। देखो मेरे पास इतना बड़ा मोबाइल है, ऐसा लैपटॉप है, इतना सारा गैजेट्स है, टेलीविज़न है, ये सब है, मैं बहुत सारा सिनेमा देख लिया, बहुत सारा टेलीविज़न देख लिया, मैं फेसबुक में भाग ले रहा हूँ या व्हाट्सएप में भाग ले रहा हूँ, इसलिए मैं सुखी हूँ। तो ये सब पागलपन का लक्षण है, सब कुछ सभी भ्रम का लक्षण है। तो विशेष करके शहर में जो भी करते हैं लोग, और पागल पागल तो पागल होते जाएंगे दुनिया लोग। इसलिए भक्तों को क्या है, जो भी मार्केट में या समाज में जो भी आ जाता है इसको उसमें डूबना नहीं है हम लोगों को। तो दुनिया के लोग फेसबुक में भाग लेते हैं, इसलिए हमें भी फेसबुक में भाग लेना, क्या हम पागल बनने के लिए कंपटीशन स्पर्धा करना चाहिए, पागल बनने के लिए स्पर्धा करना चाहिए नहीं ना, हम लोगों को क्या है वास्तविक स्तर में आना है कि नहीं। तो इसलिए शिला प्रभुपाद ऐसे लोगों को वास्तविक स्तर में लेकर आना चाहते। तो पहले वर्णाश्रम स्तर पर, बाद में भगवत भगवान के साक्षात्कार। तो इसलिए भक्तों को वर्णाश्रम में भाग लेना चाहिए, तो और भगवान की भक्ति करना चाहिए, और भगवान के धाम में जो वास्तविक सेवाएं होते हैं उसका अनुभव करना चाहिए। शहर में ठीक है, शहर में कुछ प्रचार, लोगों को ये पागलपन से बाहर लेकर आने के लिए शहर में प्रचार कर सकते हैं, आप इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो सब ठीक है, लेकिन अंत में उद्देश्य क्या है, लोगों को पागलपन से दूर लेकर आना, ठीक है। इसलिए सिर्फ प्रचारक लोगों को ये सब चीज़ यूज़ करना चाहिए, सामान्य भक्तों को भी नहीं यूज़ ज़रूरत नहीं, वो लोग यहाँ पर पागल लोग, पागलों के दुनिया में रहने की जरूरत नहीं। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरे हरे राम 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 हरे। कोई प्रश्न, टीका टिप्पणी, माया शब्द का समझ, शब्द का अर्थ समझ में आ गए, माया शब्द का अर्थ, माया दैट विच इज नॉट, जो नहीं है। तो ऐसे तो आधुनिक समाज में और माया में डूबते जा रहे लोग, सब कुछ एजुकेशन भी ऐसे, कैसे भ्रम में रहना चाहिए। तो ये सब वो एजुकेटेड एजुकेटेड डिग्री सब क्या है, पागल का लक्षण है बस, सब। मैं बड़ा साइंटिस्ट हूँ, क्या क्या हो तुम, पागल हो बस, और क्या, और लोगों को पागल बनने के लिए सहायता कर रहे हो बस। बहुत बड़ा संशोधन कर रहा हूँ, पागल बनने के लिए संशोधन कर रहे हो बस, है कि नहीं? तो अपने आप को दुनिया में जो भी बहुत बड़ा श्रेष्ठ मानता है, हमें समझना चाहिए सबसे श्रेष्ठ पागल है ये बस। सबसे सब बड़े बड़े दार्शनिक, बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े राजनीतिज्ञ, सब बहुत ही श्रेष्ठ दर्जे के पागल लोग हैं बस वो लोग। ठीक है, कोई प्रश्न?
मेरे प्रश्न है, अभी अभी अपन सिटी में व्हाट्सएप फेसबुक सब यूज करना पड़ेगा, इसमें
आप यूज़ कर सकते हैं बुक्स प्रमोट
हाँ,
करने के लिए।
तो उसमें अपन प्रचार के लिए कितना परसेंटेज तक यूज कर सकते हैं?
तो या वो भी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। कभी कभी लोग वो बोलते हैं ना, क्या हमारे भक्त लोग युक्त वैराग्य बोलते हैं, युक्त वैराग्य में भी अनासक्तस्य विषयान यथारम उपयुंजता निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य मुच्यते। पहला चीज है अनासक्ति, अनासक्ति होना चाहिए। हम लोग पहले आसक्ति से बाहर आए ही नहीं, कहाँ से अनासक्ति आएगा? इसलिए हम लोग बोलते हैं ब्रह्मचारियों को भी कुछ तो समय, प्रचारकों को भी कुछ तो समय फार्म में बिताना चाहिए। तो तब वो लोग ऐसे भौतिक आसक्तियों से वो दूर रहने का जो अनुभव, वो साक्षात्कार है वो, तब हम लोग उनको समझ सकते हैं अनासक्त है करके। आजकल बहुत सारे ऐसे प्रचारक भी आ गए ना, हम लोग प्रचार करते करके, इसलिए वर्णाश्रम वर्णाश्रम का जरूरत नहीं है, लोग प्रचार करेंगे शहर में लग जाते। तो उनको भी इस भौतिक संसार से, भौतिक जगत से, विशेष करके आधुनिक समाज से दूर रहना चाहिए कुछ समय। अनासक्तस्य विषयान यथा अर्हम, अर्हम मतलब जिस हद तक हमारे भक्ति सेवा के लिए, भगवान की सेवा के लिए सहायक हो, उस हद तक हमें उसको उपयोग करना चाहिए। तो हमारे भक्ति में क्या होना चाहिए, प्रगति होना चाहिए। भक्ति में का प्रगति में क्या क्या, कैसे हम लोग समझ सकते हैं उसको, उसके लिए भी क्या है मापदंड, क्या है मेजरमेंट, बैरोमीटर, वैराग्य और विद्या आना चाहिए। इस भौतिक संसार से वैराग्य आना चाहिए और ज्ञान बढ़ना चाहिए। वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थमेक पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुधिर्यस्तम अहम प्रपद्ये वासुदेवे भगवती भक्ति योग। एनी वे दे विल स्टॉप। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयत्यास्य वैराग्यम ज्ञानम च यद अहेतुकम्। वैराग्य और ज्ञान तो ये लक्षण है भक्ति में प्रगति करने का लक्षण। तो विशेष करके हमारे सेवा के लिए जरूरत है उतना ही हमें यूज करना चाहिए वो सेवा के लिए। तो ऐसा नहीं कि उसके लिए, उसको यूज करने के लिए कुछ सृष्टि, सेवा सृष्टि करना है। ये आ गया इसलिए मैं क्या करूँगा, कुछ सृष्टि करूँगा, ऐसा नहीं है। जरूरत पड़े तो सामान्यतः टेक्नोलॉजी दो दो चीज़ों के लिए, मंदिर और टेंपल को प्रमोट करने के लिए और बुक्स को प्रमोट करने के लिए बस, और कुछ किसी के लिए टेक्नोलॉजी वगैरह यूज, आधुनिक सुविधाओं को यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है। अभी हम फेसबुक प्रेचिंग करेंगे, हाँ, जो आचार्यों ने दिया है वर्णाश्रम सबसे मास प्रीचिंग, सभी लोगों को कृष्ण की सेवा में लगा सकते हैं हम लोग आजकल, वो भी है ना। तो दो चीज़ होता है शहर में, लोगों को समय नहीं है भगवान की सेवा करने के लिए, और उनको सेवा देने के लिए भी सेवा नहीं है शहर में, है कि नहीं? चाहे आप प्रचारक बन सकते हो या पुजारी बन सकते हो, दो चीज़ों को छोड़कर अन्य कुछ नहीं। फेस्टिवल में छोड़कर कोई सेवा होता है क्या? है ना, कुछ सेवा नहीं है ना, है कि नहीं? तो लोगों को सेवा में लगाने के लिए सेवा भी नहीं है, लेकिन वर्णाश्रम में बहुत सारा सेवा हो सकते हैं, पूरा दुनिया को लगा सकते हैं आप, इतना सारा सेवा होता है। इसके कारण बहुत प्रचार होता है, बहुत सारे लोग भक्त बन जाते हैं, बहुत सारे लोग भगवान के संपर्क में आ जाते हैं, भक्ति के संपर्क में आ जाते हैं। ये सबसे मास प्रीचिंग टेक्निक है ये वर्णाश्रम। तो जो आचार्यों ने टेक्निक प्रीचिंग टेक्निक दिया है वो छोड़कर कुछ और टेक्निक शुरू कर दिया, फेसबुक प्रीचिंग टेक्निक वगैरह, पहले ये तो स्थापित करो, बाद में जाके कुछ बचे हुए लोगों को फेसबुक से पकड़ो तुम, है कि नहीं? तो पहले वो करना चाहिए, बाद में अन्य चीज़। या दूसरा उदाहरण, हम लोग स्कूल प्रीचिंग करेंगे करके, पहले गुरुकुल तो स्थापित करो, बाद में स्कूल में जो बचे बच्चे हैं उनको प्रचार करो, है कि नहीं? गुरुकुल ही स्थापित नहीं किया, स्कूल प्रीचिंग करके क्या करने वाले हो? अंत में जाके वो बड़ा वो असुरी बनने वाला, या पागल ही बनने वाला, वो इंजीनियर ही बनने वाला, है कि नहीं? अंत में जाके इसके कारण पहले गुरुकुल स्थापित करना चाहिए, बाद में जाके वो स्कूल प्रीचिंग, वो प्रीचिंग, ये प्रीचिंग करो, ठीक है? तो इसलिए यथारम्भ उपयुंजता, जिस तो उसमें उसमें रिस्ट्रिक्शन भी है, ऐसा नहीं कि रिस्ट्रिक्शन नहीं किया, जिसके लिए योग्य। अभी प्रचार के लिए योग्य चीज़ क्या है? वर्णाश्रम। तो वो नहीं किया, कुछ और युक्त वैराग्य किया, तो क्या होने वाला फायदा? तो जो जरूरी है उतना ही। और युक्त वैराग्य अब प्रचारकों के लिए है, वो गृहस्थों के लिए नहीं है। और वास्तविक युक्त वैराग्य क्या है? वो वर्णाश्रम है वो। तो निर्बंध एक, सब कुछ भगवान के, भगवान से संबंधित है, उसको भगवान की सेवा में लगाना है। तो हम लोग ऐसे नहीं कि सब कुछ त्याग करके हिमालय में जा रहे हैं, कंदमूल खा के जी रहे हैं, नहीं। हम लोग वर्णाश्रम में क्या कर रहे हैं? फसल उगा रहे हैं, और फसल को क्या कर रहे हैं? भगवान को भोग रहे, लगा रहे हैं, या दूध को उत्पन्न कर रहे हैं, गाय का पालन करके दूध को उत्पन्न, यही युक्त वैराग्य है कि नहीं? वर्णाश्रम सर्वोच्च युक्त वैराग्य है, क्योंकि वहाँ पर अच्छे दर्जे का चीज़ों को भगवान को हम लोग अर्पण कर सकते हैं। आप अपने आप उगा के भगवान को है ना, अर्पण कीजिए, भोग बनाकर भगवान को अर्पण कीजिए, या मार्केट से खरीद कर अर्पण कीजिए, कौन सा बड़ा युक्त वैराग्य बताओ? और उन दोनों में कौन सा बड़ा अच्छा युक्त वैराग्य? तो कृष्ण भक्ति युक्त वैराग्य है, लेकिन हम लोग अच्छे दर्जे का युक्त वैराग्य करना चाहिए। वर्णाश्रम सबसे ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी युक्त वैराग्य, अच्छे दर्जे का युक्त वैराग्य है कि नहीं? हम लोग हिमालय में तो नहीं रहे ना, हम लोग वर्णाश्रम जाने से हम लोग समाज में ही रह रहे, लेकिन अच्छे दर्जे का समाज, अच्छे दर्जे का हम लोग। तो ये सब चीज़ समझना चाहिए। और कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्तवृंद की जय।